अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है शारदा। चेहरा देखो इसका, किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रहा है। तस्वीर में इतनी खूबसूरत है तो असल जिंदगी में कितनी खूबसूरत होगी। शारदा देवी के सामने बैठी एक औरत ने शारदा देवी से ये बात कही थी। शारदा जी ने हंसते हुए कहा, बेशक मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी नज़र बहुत पारखी है प्रमिला। अगर तुमने इतनी ही पारखी नज़र से मेरी बेटी की खूबसूरती पहचान ली है तो फिर उतनी ही बड़ी कीमत भी होनी चाहिए। प्रमिला हंसते हुए शारदा देवी के कंधे पर मारती है और कहती है, तू सच में बहुत मजा किया है, चल बता क्या कीमत है तेरी बेटी की। शारदा जी ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान रखते हुए कहा, अरे तुम बताओ, तुम क्या देना चाहेगी। मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी की सुंदरता की तुलना तुम कर नहीं पाओगी। इसने तो एक ऐसे इंसान को अपने पीछे दीवाना बना रखा था जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगती थी। प्रमिला अरुणिमा की तस्वीर को अपने हाथ में लेती है और उसे शातिर नज़रों से देखते हुए कहती है, बेशक से क्यों नहीं होगा कोई इसका दीवाना, दिखने में कितनी खूबसूरत है। इसे किसी बड़े करोड़पति को बेच दूंगी और वहां से मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन शारदा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। देखो शारदा, मेरे धंधे का रूल है, प्रेग्नेंट लड़कियां हमारे यहां पर नहीं चलती है, तो इसके लिए पहले इसका तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। शारदा देवी ने चिढ़ते हुए कहा, वही तो प्रॉब्लम है प्रमिला, कि मैं इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ। इसकी प्रेग्नेंसी को 5 महीने हो गए हैं। अब अगर मैंने इसका अबॉर्शन करवाया तो अरुलिमा की जान को खतरा है। लेकिन प्रमिला के चेहरे पर कुटिल मुस्कान अभी भी थी और उसने कहा, अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हमारे यहाँ पर बहुत सी नाजायज औलादें पल रही हैं, इसकी भी पल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, हम इसके बच्चे को रखने के लिए तैयार है। अगर लड़का हुआ तो हमारे लिए काम करेगा और अगर लड़की हुई तो भी हमारे बहुत काम की है। तो ठीक है, पहले तुम अपनी बेटी को हमारे पास भेजो, उसके बाद ही हम तुम्हें पैसे देंगे। शारदा देवी अपनी जगह से उठती है और प्रमिला को देखकर कहती है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द उसे तुम्हारे पास भेजने का बंदोबस्त करती हूँ। पर याद रखना, उसे ऐसी जगह पर भेजना जहाँ से वो कभी वापस ना पाए। अगर वो वापस आ गई ना प्रमिला, तो समझ लो तुम्हारा ये जो लड़कियों का धंधा है ना, ये चौपट हो जाएगा। प्रमिला भी खड़ी होती है और कहती है, शारदा, बड़ी से बड़ी कमीनी औरतें देखी है मैंने अपनी ज़िंदगी में, पर तुम जैसी कमीनी माँ नहीं देखी है जो अपनी ही बेटी को बेचने की बात कर रही है। शारदा जी के चेहरे पर एक कुटीन मुस्कान थी और उसने अपने चेहरे पर एक गुरूर रखते हुए कहा, हाँ, मैं इसे बेचने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है। और ये लड़की ये सच जानने के बाद भी कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे अपनी माँ मानती है, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से इसकी परवरिश की है। इसे लगता है मैंने कोई महान काम किया है इसको पालकर, इसीलिए तो मेरे लिए अपने पूरे परिवार से लड़ गई और अपने पति तक को छोड़ दिया इसने। पर मुझे पता है, अरुणिमा जितनी सीधी और जितनी भोली है उतनी चालाक भी है। अगर वो सच जानने पर आई तो ये भी जान लेगी कि इन सबके पीछे मेरी मंशा क्या है, और मैं नहीं चाहती कि इसे कभी भी मेरे बारे में कुछ पता चले, इसीलिए इसे बेचने की प्लानिंग कर रही हूँ। अपनी बुरी यादों को सोचते हुए शारदा जी उस पार्क से बाहर आती है और अपने चेहरे को ढककर ऑटो में बैठकर कहीं निकल जाती है। वो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि अब अरुणिमा उनके किसी काम की नहीं है, ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। उनका सब कुछ पहले ही आस्तिक ने हड़प लिया है और अरुणिमा के साथ वो एक छोटे से कमरे में रहकर जिंदगी गुजार रही है। वो ऐसे नहीं रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने अरुणिमा को बेचने का फैसला कर लिया था, ताकि उसे जो भी पैसे मिले उसे लेकर मिश्री को लेकर कहीं चली जाए। पुलिस स्टेशन। आस्तिक अभी भी जेल में बंद था, उसका चेहरा नीचे था और उसकी आंखें बंद थी। तभी एक कांस्टेबल आस्तिक की सेल का दरवाजा खोलता है और कहता है, राजा साहब, आप बाहर आ जाइए। आस्तिक जल्दी से खड़ा होता है और बाहर आता है। उसे लगा शायद उसका वकील आया होगा, लेकिन बाहर उसे सिर्फ पृथ्वी नजर आता है और उसके साथ सक्षम था। उन दोनों को देखकर आस्तिक हैरान हो जाता है। उन्हें तो लगा कि वकील उसकी जमानत के लिए आया होगा, लेकिन उन दोनों को देखकर वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सक्षम ने कहा, राजा साहब, अरुणिमा ने अपना केस वापस ले लिया। आस्तिक ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। अरुणिमा ने केस वापस ले लिया है, लेकिन क्यों? क्या उसे सच्चाई का पता चल गया था? लेकिन इस सच्चाई का पता चलने के बावजूद भी वो केस वापस नहीं ले सकती थी। आस्तिक के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो वहां से सीधे बाहर की तरफ चला जाता है और पृथ्वी और सक्षम बाकी की फॉर्मैलिटी पूरी करते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं आस्तिक फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आस्तिक चिल्लाता हुआ किसी से कहता है, मुझे सिर्फ उस ऑफिसर का ट्रांसफर चाहिए, उसे किसी जंगल में भेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन रजत का ट्रांसफर करवाओ। अगर उसका ट्रांसफर नहीं होगा तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। सामने से कमिश्नर साहब कहते हैं, माफ कीजिए राजा साहब, लेकिन हम रजत का ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि रजत स्पेशल टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो पुलिस वाला नहीं है, आर्मी ऑफिसर है, और हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम किसी आर्मी ऑफिसर का ट्रांसफर करवा सके। आस्तिक गुस्से में कहता है, अगर तुम उसका ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो तो फिर क्यों उसे बार बार मेरे घर भेज देते हो, मुझे अरेस्ट करवाने के लिए? क्या यही इज्जत रह गई है मेरी कि एक दो कौड़ी का आर्मी ऑफिसर मुझे मेरे घर से उठाकर लाकर जेल में बंद कर देता है? बता रहा हूँ कमिश्नर, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ पर सूरज की रोशनी को तरसोगे तुम। कमिश्नर साहब आस्तिक को समझाते हुए कहते हैं, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ राजा साहब, लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए। रजत पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, वो सिर्फ स्पेशल टीम का एक हिस्सा है। उसने सिर्फ आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं, आपको गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। जिन लोगों ने आपको गिरफ्तार किया है, मैं उन सारे लोगों का ट्रांसफर पेपर रेडी करवा चुका हूँ, लेकिन रजत को कहीं भी भेजने का हक हमें नहीं है। इसके लिए आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, आपको दिल्ली बात करनी पड़ेगी। आस्तिक गुस्से में फोन रख देता है। सक्षम और पृथ्वी आस्तिक के पास आते हैं तो पृथ्वी कहता है, भाई ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये मत भूलिए रजत कीर्ति का पति भी है। मुझे गिरफ्तार करने से पहले उसने सोचा था कि मैं कीर्ति का भाई हूँ, नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं? और कीर्ति का क्या होगा, वो मैं देख लूंगा। सारी जिंदगी मुझे मेरी बहन को अपने घर पर रखना पड़ेगा ना, मुझे मंजूर है, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा।